निर्गमन 20 अध्याय 8 से 10 पद। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हमें सबत के दिन को पवित्र रखने के लिए क्या करना चाहिए? पहला, हमें कोई सांसारिक काम नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हमारे व्यवसाय के क्षेत्रों को सुरक्षा देंगे जब हम सबत के दिन को उनके वचनों के अनुसार पवित्र मानेंगे। लेकिन कभी कभार, यहाँ तक कि आपके पास विश्वास है और आप प्रभु के दिन को पवित्र मानना चाहते हैं, हो सकता है कि आपको किसी कारण रविवार के दिन काम करना पड़े जो आपके नियंत्रण से बाहर है। पहला मामला, वो जो लोगों के जीवन और उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। दूसरा, वो जो रेस्टोरेंट या फिर किसी क्षेत्र में कुछ बांटने का काम करते हैं, उन्हें भी रविवार को काम करना पड़ता है। तीसरा, या फिर किसी कंपनी में रविवार को कभी कभार काम करना पड़ता है। चौथा, कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परीक्षाएं रविवार के दिन होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इन सभी परिस्थितियों में हर एक मनुष्य का हृदय आपके पास सबत के दिन को पवित्र रखने की इच्छा और लालसा होनी चाहिए। होने पर आप सबत के दिन को स्मरण रखें और इस तरीके से इसे लालसा भरे हृदय से आप पवित्र माने और सच्चे विश्राम का आनंद ले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, इज़राइल के लोग मिस्र में 400 सालों तक रहे और बाद में वो वहां पे दास बने और वो मुश्किलों में और कठिनाइयों में रहे और उन्होंने खतरनाक कार्य किए। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने अपने उस वायदे को याद रखा जो उन्होंने उनके पूर्वजों से इब्राहिम, इसहाक और याकूब से बांधा था। परमेश्वर ने मूसा को इसराइल के लोगों को मिस्र से निकालने के लिए बुलाया। जो भी है, जो फिरौन था, वो वहां से उनको नहीं भेजना चाहता था। तब 10 विपत्तियां मिस्र के ऊपर आई। कोई भी विपत्ति इसराइल के लोगों पर नहीं आ सकती थी जो गोसान की भूमि पर रह रहे थे। आपने इसका अनुभव किया है, ठीक? निर्गमन 8 अध्याय 22 पद कहता है, उस दिन मैं गोसान देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा और उसमें ढांसों के झुंड ना होंगी, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच मैं ही यहोवा हूँ। परमेश्वर ने उस स्थान को अलग किया जहां इसराइल के लोग रहते थे और उनको सुरक्षा दी। कितना धन्यवादी उनको होना चाहिए था, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए और अलग किए हुए लोग थे। और यह भी, उनको परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा बदल जाना चाहिए था। और यहां तक कि आज भी परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को अलग करते हैं, उन्हें सुरक्षा देते हैं आत्मिक गोशान में। जिस तरीके से परमेश्वर ने इसराइल के लोगों को मिस्र में 10 विपत्तियों से बचाया, वो अपनी संतानों की अगुवाई करते हैं संसार के हर एक विपत्तियों से। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, परमेश्वर की संतानों को गोशान की भूमि पर रहना चाहिए। गोशान की भूमि पर रहने का आत्मिक मतलब है परमेश्वर के वचनों में बने रहना। परमेश्वर हमें सबत के दिन को पवित्र रखने के लिए कहते हैं। इस सत्र की शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सबत के दिन को पवित्र रख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर के वचनों का आज्ञा पालन करते हुए आप सबत के दिन को पवित्र रखेंगे, ताकि आप परमेश्वर के संतानों के रूप में पहचाने जाएं, आपकी अगुवाई हो और आप बहुतायत से आशीषें प्राप्त करें। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस संसार से जो दो शत्रु शैतान से संबंधित है, आप इसे अलग हों और आप सुरक्षा पाएं और आशीषें प्राप्त करें परमेश्वर से, ताकि आप धन्यवाद के साथ भरे रहें। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हमें सबत के दिन को पवित्र रखने के लिए क्या करना चाहिए? पहला, हमें कोई भी सांसारिक काम नहीं करना चाहिए। हमारे लिए सबत के दिन का मतलब कि हम चर्च में आए, आराधना सभा में भाग लें और दूसरे विश्वासियों के साथ सभा में शामिल हों और आत्मिक रूप से विश्राम का आनंद लें। आज का बाइबल पद निर्गमन 20 अध्याय 8 से 10 पद हमें कहता है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। छह दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। यहाँ पर काम करने का मतलब है जो इस संसार के काम है, जिनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, ये उन कार्यों से संबंधित है। वो निजी कार्य जो हम अपने लाभ के लिए करते हैं, जैसे कि हम मेहनत करके पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। निश्चित तौर से हमें छह दिन तक अपने विश्वास योग्यता के साथ कार्य करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है छह दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना। परिवार के मुखिया को अपने परिवार की देखरेख करनी पड़ती है, और गृहिणी को घर के कामों की देखभाल करनी पड़ती है। विद्यार्थियों, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, लेकिन प्रभु के दिन आपको विश्राम करना है। स्वर्गीय नागरिक होने के नाते और परमेश्वर के संतान होने के नाते, इसके बजाय कि आप अपने आप को संसार की चीजों में भाग ले। लेकिन आज का बाइबल पद कहता है, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर है। किसी को भी कार्य नहीं करना चाहिए। इसका आत्मिक मतलब है कि आपको विश्राम करना है। ना केवल आप, हर एक चीजें जो आपके नियंत्रण में है, आपको हर एक चीजों से विश्राम करना है, ताकि आपका दिमाग संसार की चीजों को सोचने में व्यस्त ना हो, ताकि आप परमेश्वर में बने रहने के योग्य हो। क्या आप में से ऐसा कोई है जो ऐसा सोचता है कि मुझे पैसे कमाने हैं तो फिर मैं कैसे पूरे दिन का विश्राम कर सकता हूँ, इससे मुझे बहुत ज्यादा हानि होगी? लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके कार्य के क्षेत्र को और आपके व्यवसाय के क्षेत्र को सुरक्षा देंगे, जब आप सब्बत के दिन को उनके वचनों के अनुसार पवित्र मानेंगे। यहाँ तक कि आप केवल छह दिन के लिए कार्य करते हैं, परमेश्वर आपको उतना ही ज्यादा देते हैं। यहाँ तक कि अगर आप सातवें दिन कार्य करें, उससे भी बढ़कर। हम इसे बिल्कुल साफ तरीके से देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इसराइल के लोगों को इसका अनुभव होने दिया। निर्गमन के समय में जब वो लोग जंगल में थे, तो उनके लिए खाना प्राप्त करना आसान नहीं था। जब लोगों ने शिकायत की, तो परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया छह दिन के लिए, हर दिन सबत के दिन को छोड़कर। परमेश्वर ने सबत के दिन उनको मन्ना नहीं दिया ताकि वो सबत के दिन को पवित्र रख सके। इसके बजाय उन्होंने पहले ही दिन उनको दो दिन के लिए मन्ना दे दिया था, और दूसरे दिन के लिए अगर वो कुछ मन्ने को छोड़ते तो हो सकता था कि वो कुछ खराब हो सकता था या उसमें कीड़ा लग सकता था। लेकिन हैरानी की बात है, सबत के दिन से पहले जब वो मन्ने के लिए इकट्ठे हुए, तो ना ही खराब हुआ था और ना ही उसमें कुछ कीड़ा लगा था और ना ही वो कम पड़ा था। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, तो उनको रविवार के दिन कोई मन्ना नहीं मिला। परमेश्वर ने उनको समझने दिया कि वही केवल एक है जो उनको जीवन की रोटी दे सकते हैं। इससे बढ़कर उन्होंने उनको यह अनुभव करने दिया कि परमेश्वर उनको इतना दे सकते हैं कि वो सात दिन तक खा सके, यहाँ तक कि वो छह दिन के लिए खाना इकट्ठा करते हैं सबत के दिन को छोड़कर। यह सिद्धांत आज भी इसी तरीके से लागू होता है। परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष देते हैं जब हम उनके वचनों के अनुसार सबत के दिन का पालन करते हैं। लेकिन अगर आप सबत के दिन काम करने के द्वारा सबत के दिन का उल्लंघन करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा नहीं करते, तो आप परमेश्वर से सुरक्षा और आशीष नहीं प्राप्त कर सकते, और जो आपकी कमाई है वो घट जाएगी, और आपको हो सकता है कि कुछ और हानि हो सकता है कि अचानक से आपको कोई बीमारी या कोई और दुर्घटना हो सकती है। और यहाँ तक कि अगर आप सबत के दिन काम करें, तो जो उसका परिणाम होगा, तो आपकी कमाई नहीं बढ़ेगी, उनकी तरह जो इसराइल के लोग सबत के दिन मन्ना इकट्ठा करने गए थे। अगर आप यूरोप में जाएंगे, तो आप वहां पे देखेंगे कि वहां पे बहुत से देश सबत के दिन को पवित्र मानते हैं। वो रविवार के दिन अपनी दुकानें नहीं खोलते। मैं 1989 में यूरोप में गया, और बाद के कई सालों में भी मैं वहां गया। जब मैं फ्रांस में गया, रोम और दूसरे अन्य कई देशों में गया, तो मैंने देखा कि वहां पे रविवार के दिन बहुत से दुकानें बंद थी। बहुत से कलीसिया के सदस्यों ने अपनी गवाही दी कि उन्होंने सुरक्षा और आशीषें प्राप्त की सबत के दिन को विश्वास के साथ पवित्र मानने के द्वारा। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे गवाहियां हैं वो जो अपनी दुकानें चलाते हैं, जब उन्होंने रविवार के दिन विश्वास के साथ अपनी दुकानों को बंद किया और वो कलीसिया में आए और उन्होंने कहा कि वो 6 दिन में इतना ज्यादा कमा पाए कि वो पहले 7 दिन में भी नहीं कमा पाते थे। उन्होंने ऐसे गवाहियों को खुशी के साथ दिया। उन्होंने कहा कि उनकी आमदनी बढ़ गई जब से उन्होंने सबत के दिन को पवित्र रखना शुरू किया। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो सबत के दिन काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, लेकिन अचानक से किसी दुर्घटना के कारण वो अपना सारा पैसा वहां खर्च कर देते हैं। अगर आप परमेश्वर के द्वारा सुरक्षा नहीं पाते और अपना सब कुछ खो देते हैं जो आपने कमाया है, तो आपकी जो कमाई है वो बेअर्थ होगी। तो आप परमेश्वर से आशीष और सुरक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, तो आपको बहुत हानि होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप सबत के दिन को पवित्र रखेंगे और परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषों को नहीं खोएंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आजकल के दिनों में आपका विश्वास बढ़ गया है और आप सबत के दिन को पवित्र मानते हैं और रविवार के दिन आप इस संसार में काम नहीं करते। आप चर्च में आते हैं और आराधना सभा में भाग लेते हैं और अपने परमेश्वर के द्वारा दिए गए कार्यों को करते हैं, लेकिन कभी कभार आपके पास विश्वास है और आप प्रभु के दिन को पवित्र मानना चाहते हैं, तो किसी कारणों से आपको काम करना पड़ सकता है जो आपके नियंत्रण से बाहर है। तो कृपया करके मुझे ध्यान से सुने, ठीक? अगर आपने कभी सोचा है कि मेरे पास विश्वास है कि मैं सब्बत के दिन को पवित्र रखूं, लेकिन किसी न किसी परिस्थितियों की वजह से मेरे जीवन में बार बार समस्याएं आती हैं, तो कृपया करके इस संदेश पे अपना ध्यान दें और अपने समाधान को पाएं। मैं आपको कुछ मामलों के बारे में बताता हूँ। यह संसार पुराने नियम के समय से कुछ अलग हटके है। पुराने नियम के समय में सारे इसराइल के लोग सबत के दिन को पवित्र मानते थे, क्योंकि हर कोई सबत के दिन को पवित्र मानता था, तो ये उनके लिए मुश्किल नहीं होता था कि वो सबत के दिन को पवित्र माने, और ये उस राष्ट्र का नियम भी होता था। लेकिन आज के दिन में ये स्थितियां बिल्कुल अलग है। हम संसार के लोगों के साथ रहते हैं जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, और हम कोई ऐसे देश में नहीं रहते जहां पर उस राष्ट्र के नियम के अनुसार सबको सबत के दिन का पालन करना है। और यह भी, पुराने नियम के समय में बहुत से लोग किसान थे, मछुआरे थे और चरवाहे थे, लेकिन आजकल के दिनों में बहुत से अलग अलग कार्य हैं। तो हो सकता है कि सबत के दिन को पवित्र रखने का तरीका आजकल के दिनों में थोड़ा अलग हो। निश्चित तौर से परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है कि सबत के दिन को पवित्र रखें, यह नहीं बदला है। यहाँ तक कि आजकल के दिनों में आपको आज भी सबत के दिन को पवित्र मानना है परमेश्वर के वचनों के अनुसार, लेकिन परमेश्वर सबसे ज्यादा क्या देखते हैं? वो मनुष्य के अंदरूनी हृदय को देखते हैं। सबत के दिन को पवित्र रखने की औपचारिकता, हाँ, वो निश्चित तौर से महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी कि आप किस तरीके के हृदय से सबत के दिन का पालन करते हैं। अगर आप इस बात को समझे कि क्यों परमेश्वर ने हमें सबत के दिन को पवित्र रखने की आज्ञा दी है और उसकी इच्छा के अनुसार चले, तो परमेश्वर आपके हृदय को ग्रहण करेंगे। अगर हो सकता है कि आपको बहुत सी परिस्थितियों के कारण अगर आपको रविवार के दिन काम करना पड़े, तो परमेश्वर आपको नहीं कहेंगे कि आपने सबत के दिन का उल्लंघन किया है। और यह भी कि वो लोगों के विश्वास के स्तर के अनुसार अलग अलग मापदंडों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई नया विश्वासी है जिसके पास कमजोर विश्वास है, उसके पास ऐसा विश्वास नहीं है कि वो अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित कर सके, इसीलिए वो सब्बत के दिन को पूरी तरीके से पवित्र नहीं मान सकता। और यदि इस स्तर पर आप उन पे दबाव डालते हैं कि आप सब्बत के दिन को पवित्र माने, तो हो सकता है कि वो अपनी ताकत को खो दें और यहाँ तक कि वो चर्च आना भी छोड़ दें। ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो एक आत्मा को भी संसार से ज्यादा कीमती समझते हैं। आपको उनकी अगुवाई करनी है ताकि वो अपना सबसे बेहतर कर सके अपने विश्वास के स्तर के अनुसार, जब तक उनका विश्वास नहीं बढ़ता। जिनके पास अच्छा विश्वास है, हो सकता है कि कुछ परिस्थितियों के कारण उनको काम करना पड़े। मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरीके से सबत के दिन को पवित्र मान सकते हैं। सबसे पहली परिस्थिति, वो जो लोगों के जीवन और उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, जैसे कि सिपाही, पुलिस और मेडिकल डॉक्टर्स। आप सोचिए, अगर सिपाही और पुलिस अगर वो काम नहीं करे और पूरे रविवार के दिन को चर्च में बिता दे क्योंकि उन्हें सबत के दिन को पवित्र मानना है, तो फिर क्या होगा? तो फिर जो उस राष्ट्र की सुरक्षा है वो खतरे में होगी, और जो समाज का नियम है तो उसका फिर उल्लंघन होगा। वो देश के नियमों से बंधे होते हैं और उनके पास बहुत से बाधाएं होती हैं, इसलिए वो पूरे सब्बत के दिन को पवित्र नहीं मान सकते। जब कोरिया में युद्ध हुआ, यह नॉर्थ कोरिया में हुआ, 6 दिन के लिए यह युद्ध हुआ 1967 में, और मुझे याद है एक जर्नल का नाम जिसका नाम मोशे था, मैंने एक अनुच्छेद को पढ़ा। उसने इस तरीके से प्रार्थना की कि सारी सृष्टि के परमेश्वर होने पाए कि ये युद्ध 6 दिन में खत्म होने पाए, ताकि मैं सबात के दिन का उल्लंघन ना करने पाऊं। ये उन दिनों में उन अखबारों में और खबरों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। उस समय मैं परमेश्वर में विश्वास नहीं करता था, मैं आश्चर्यचकित था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। और 6 दिन में युद्ध खत्म हो गया और इसराइल के लोगों ने जीत प्राप्त के बिना सब्बत के दिन का उल्लंघन किए हुए। 6 सालों के बाद एक और युद्ध हुआ जो 1973 में हुआ, और उन्होंने इसराइलियों पर रविवार के दिन आक्रमण किया, क्योंकि इसराइल के लोग सब्बत के दिन को पवित्र मानते थे। इसीलिए शुरू में ऐसा दिखता था कि इसराइली हार जाएंगे, लेकिन सब्बत के दिन पूरा होने के बाद उन्होंने दोबारा से खोई हुई भूमि को प्राप्त कर लिया। अगर सिपाही और पुलिस के लोग सब्बत के दिन को पवित्र माने क्योंकि यह सब्बत का दिन है, तो फिर हो सकता है कि उस देश के लिए हानि हो और उस देश का नाश हो जाए। अगर कहें कि जो पुलिस के लोग हैं उनको रविवार के दिन आराम लेना है, तो फिर जो चोर लोग हैं वो अपना काम करेंगे रविवार के दिन, ठीक? ये उनके लिए भी ऐसा ही है जो मेडिकल डॉक्टर्स, नर्सिस और दूसरे जो मेडिकल क्षेत्र में काम करते हैं। अगर वो रविवार के दिन अपने अस्पतालों को बंद कर दें, तो जो मरीज हैं अस्पताल में वो रविवार के दिन कैसे उपचार लेंगे? उनके लिए बड़ी समस्या होगी जो रविवार के दिन आपातकालीन स्थिति में है। इसलिए यदि वो रविवार के दिन काम करें, तो परमेश्वर ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने पाप किया है, या फिर इस लोगों को रविवार की सभाओं में भाग लेना चाहिए। काम पे जाने से पहले या काम के बाद उन्हें आराधना सभाओं में भाग लेना चाहिए। अगर हो सके तो ये उनके लिए अच्छा होगा कि वो सब्बत के दिन को पूरी तरीके से पवित्र माने। आजकल के दिनों में बड़े बड़े मेडिकल अस्पतालों में ऐसे स्थान बनाए गए हैं ताकि वो आराधना सभा कर सके, या फिर उनके अंदर चर्च होते हैं ताकि वो मरीज वहाँ पे आराधना सभा में भाग ले सके। उनके पास ऐसी सुविधाएं होती है मरीजों के लिए ताकि वो आराधना सभा में भाग ले सके। अगर ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो आप इंटरनेट के द्वारा भी आराधना सभा में भाग ले सकते हैं। अगर ऐसी कोई चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आप सब्बत के दिन को पूरी तरीके से अपने हृदय के साथ पवित्र मान सकते हैं इस संसार में बिना आनंद लिए हुए। अगर आप आराधना सभा में भाग ले सके जल्दी सुबह या फिर शाम को, तो आपको उन सभाओं में भाग लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि आप सरमन टेप्स के द्वारा उन संदेशों को सुने जो रविवार की सभाओं में आपको दिए गए थे। उदाहरण के लिए, कुछ कलीसिया के सदस्य जिनको काम करना पड़ता है और उनकी छुट्टी किसी और दिन होती है, उनकी शिफ्ट बदलती रहती है, और सब्बत के दिन को पवित्र रखने के लिए इस कलीसिया में ऐसे कोई सदस्य हैं जो दूसरे लोगों की शिफ्ट में काम करते हैं ताकि वो सब्बत के दिन को पवित्र रख सके। एल्डर डेगी छो के बड़े भाई वो कैदियों के लिए काम करते हैं, और सब्बत के दिन को पवित्र रखने के लिए वो सप्ताह में 2 दिन ज्यादा काम करते हैं, और वो दूसरे लोगों के शिफ्ट में काम करते हैं। जब उन्हें रविवार के दिन काम करना होता है, तो वो दूसरे लोगों से मांगते हैं अपनी शिफ्ट को, ताकि वो सब्बत के दिन को पवित्र रख सके। जितना ज्यादा आपके पास विश्वास होगा, आप सब्बत के दिन को पवित्र रख सकते हैं। और वैसे भी वो अब हमारी कलीसिया में एक पास्टर बन गए हैं। दूसरा, वो जो चीजों को बांटने वाले क्षेत्र में और रेस्टोरेंट में काम करते हैं, उन्हें भी रविवार के दिन काम करना पड़ता है। हमारी कलीसिया में भी लाइट और सॉल्ट मिशन है जो इस बिजनेस में काम करते हैं। जिस तरीके से संसार बदल रहा है तो बहुत से दुकानें रविवार के दिन खुली रहती हैं। मैं इस देश के बारे में बात कर रहा हूँ, इसीलिए तो बहुत सारे लोगों को रविवार के दिन काम करना पड़ता है। लाइट और सॉल्ट मिशन के सदस्य वो अपना काम खत्म करने के बाद आराधना सभा में भाग लेते हैं। वो काम करने के बाद इकट्ठे होते हैं और आराधना सभा में भाग लेते हैं। अगर आप उन लोगों से संपूर्ण सब्बत दिन को पवित्र रखने के लिए कहें तो आप उन्हें सुसमाचार का प्रचार नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि हम उनको ऐसे कहें कि वो अपना कमाना छोड़ दें। इसीलिए सबसे पहले हमें उन्हें रविवार की रात के सभाओं में बुलाना चाहिए जब वो अपना काम खत्म कर लेते हैं। सबसे पहले हमें उनकी अगुवाई करनी है ताकि वो अपने विश्वास में बढ़ सके वचनों के द्वारा, और जब उनका विश्वास बढ़ेगा तो वो अपनी मर्जी से किसी दूसरे काम को ढूंढेंगे जहां वो सब्बत के दिन को पवित्र मान सके। लेकिन लाइट एंड सोल्ट मिशन के सदस्य, उनके पास ऐसा विश्वास होना चाहिए कि वो सब्बत के दिन को पवित्र रख सके। लेकिन उनमें से बहुत से चुने गए हैं ताकि वो बहुत सी आत्माओं की अगुवाई कर सके। वो जो पहले लाइट एंड सॉल्ट मिशन के सदस्य थे, उनके पास बहुत से लोगों के पास अच्छा विश्वास था ताकि वो सब्बत के दिन को पवित्र रख सके। उनमें से बहुत से लोगों ने अपने कामों के क्षेत्रों को बदल दिया जहां पर वो सब्बत के दिन को पवित्र रख सके। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका रविवार के दिन छुट्टी होती है। वो इस कलीसिया में आते हैं और आराधना सभा में भाग लेते हैं। लाइट एंड सॉल्ट मिशन के सदस्य, उनके पास एक अच्छा विश्वास होने पाया और अब वो इस कलीसिया में आ गए हैं। इसीलिए लाइट एंड सॉल्ट मिशन में कोई जागृति नहीं हो पाई है क्योंकि वो इस कलीसिया में आ गए हैं जब उनके पास अच्छा विश्वास हुआ। तो जो भी है, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छा विश्वास है और वो अभी भी लाइट एंड सॉल्ट मिशन में है। वो वहां पर है ताकि उनका मिशन में लगातार जागृति होने पाए। वो दूसरे लोगों को सुसमाचार का प्रचार करते हैं, यहाँ तक कि उनके पास अच्छा विश्वास है कि वो सब्बत के दिन को पवित्र रख सके। लेकिन वो वहां पर रहते हैं और दूसरे लोगों की मदद करते हैं। तब क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर उनको ऐसा कहेंगे कि क्यों आप सब्बत के दिन को पवित्र नहीं मान रहे? इसके बजाय परमेश्वर उनकी प्रशंसा करेंगे। यहाँ तक कि उनके पास अच्छा विश्वास है, वो अपने आप का बलिदान करते हैं और दूसरे लोगों को सुसमाचार का प्रचार करते हैं। जिस तरीके से इस समूह का नाम बताता है, वो अभी भी उस समूह में रहना चाहते हैं ताकि वो इस संसार के लिए ज्योति और नमक बन सके और वो उन लोगों को बचा सके जो उनके क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। परमेश्वर उनको ऐसा नहीं कहेंगे कि वो सब्बत के दिन का उल्लंघन कर रहे हैं। और कुछ और परिस्थितियां भी ऐसी ही हैं। कभी कभार न सिर्फ नौकर को बल्कि मालिक को भी रविवार के दिन अपनी दुकानों को खोलना पड़ता है। यह है इसलिए क्योंकि उनको अपनी कंपनी के और डिपार्टमेंट के नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर वो डिपार्टमेंट स्टोर रविवार के दिन खुला हो तो फिर उसको रविवार के दिन नहीं बंद कर सके क्योंकि उनको अपने डिपार्टमेंट के और अपनी कंपनी के उन नियमों का पालन करना पड़ता है। तो फिर वो ऐसी परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं? वो किराए पर किसी विश्वासी को रख सकते हैं ताकि वो रविवार के दिन उस दुकान को खोल दे। अविश्वासी, यहाँ तक कि वो रविवार के दिन काम नहीं करते तो वो अपने समय को इस संसार में बिताते हैं और वो कलीसिया में भी नहीं आते। यहाँ तक कि अगर रविवार के दिन स्टोर को बंद कर दें तो अविश्वासी कलीसिया में नहीं आएंगे। इसके बजाय वो अपने आप का इस संसार में आनंद लेंगे, खाने में और पीने में। यह परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन करना नहीं है कि आप किसी विश्वासी को किराए पर रखें और उसे काम करने दें। तो फिर जो इस दुकान का मालिक है तो वो परमेश्वर को जो रविवार के दिन कमाता है वो दे सकता है। यह है इसलिए क्योंकि उसने इस लालच के साथ दुकान नहीं खोली थी कि वो पैसों को कमाना चाहता है। लेकिन अगर आप इस संबंध में दुकान के साथ जुड़े हुए हैं और परमेश्वर की आराधना सच्चाई और आत्मा से नहीं कर पाते, तो आपको इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि परमेश्वर आपके लिए काम करने पाए। अगर आप सच्चे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। मैं सोचता हूं कि मैंने आपको अपनी गवाही के बारे में बताया है। प्रभु को ग्रहण करने से पहले मैं बहुत बड़े कर्ज में था। जब से मैं 7 सालों से बीमार था तो बहुत बड़ी कर्ज की मात्रा हमारे ऊपर थी, और यहाँ तक कि मैं और मेरी पत्नी बहुत मेहनत से काम करते थे, और प्रभु को ग्रहण करने के बाद परमेश्वर ने हमें उस कर्ज को चुकाने में हमारी मदद की। तब एक जॉब का ऑफर मेरे पास आया। उस जॉब के ऑफर में वो एक अच्छी आमदनी देते और एक घर, ये मुझे और मेरी पत्नी को मिला, और यहाँ तक कि वो कुछ अतिरिक्त आमदनी भी देते। लेकिन मैंने उस ऑफर को नकार दिया क्योंकि मुझे एक महीने में 2 सप्ताह रविवार के दिन काम करना पड़ता। तब मैं एक नया विश्वासी था। वहां पर कुछ पहाड़ थे और मैं और मेरी पत्नी उन पहाड़ों पर चले जाते थे और वहां से कुछ चट्टानें और पत्थरों को इकट्ठा करते थे जो कि किसी भवन का निर्माण करने के बाद बच जाती थी। ये बहुत मुश्किल होता था और हम पास्टर सुजन ली को एक छाते के नीचे रख देते थे क्योंकि गर्मी होती थी, और फिर हम उन चट्टानों को इकट्ठा करते थे। और यहाँ तक कि मुझे एक अच्छा ऑफर मिला, मैंने उसे नकार दिया क्योंकि मैं सबत के दिन को तोड़ना नहीं चाहता था। मैंने उस ऑफर को नकार दिया और ऐसा काम किया। कितना ज्यादा मजबूत संबंध मेरे और परमेश्वर के बीच में है। जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैंने और मेरी पत्नी ने भी और तीनों बच्चों ने भी, पास्टर सुजन ली, मियोंग ली, मिक्योंग ली, हमने कभी भी सबत के दिन का उल्लंघन नहीं किया। जब मुझे जागृति सभाओं की अगुवाई करनी होती थी जो सियोल से थोड़ा दूर होती थी, मैंने रविवार के दिन ही उन सभाओं को खत्म किया और सारे पेपर पर साइन किए और वहां से मैं चल पड़ा रात को लगभग 10 बजे के आसपास। और मैं कभी भी बीच में नहीं रुका कि हम विश्राम कर सके, कि हम कुछ खा सके या फिर हम कुछ पी सके। जब वहां पर कोई सेमिनार होता था, जैसे कि सेल लीडर सेमिनार, तो मैं वहां से जल्दी निकल पड़ा। जब मैंने अपना काम खत्म किया रविवार के दिन, केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरी टीम भी, उन्होंने कभी भी रविवार के दिन कुछ नहीं खरीदा। जब हम रास्ते में घर आते थे, जब हम वहां से सियोल आते थे, आप इस तरीके से पूछ सकते हैं, मैं क्या करूं अगर मेरा बच्चा कुछ मांगे तो, मुझे उस समय क्या करना चाहिए? हो सकता है कि आपका बच्चा रोए, लेकिन आपको पहले से उसकी तैयारी करनी चाहिए। आप क्यों पहले से ही ऐसी चीजों को नहीं खरीदते, जैसे कि शुक्रवार और शनिवार को? आप ऐसी चीजों को पहले से ही खरीद सकते हैं। आप ऐसी चीजों को पहले से ही तैयार कर सकते हैं और अपने बच्चों को दे सकते हैं। मेरे पास कोई कार नहीं है, क्या आपको ऐसा कहने की जरूरत है? क्यों आप ऐसी चीजों को पहले से ही नहीं खरीदते और अपने बैग में नहीं रखते? हो सकता है कि गर्मी के दिनों में आप ठंडी पीने की चीजों को पहले से ही खरीद कर नहीं रख सकते, लेकिन रात को 12 बजे के बाद आप जा सकते हैं और कुछ पी सकते हैं। मैंने कभी भी कोई समझौता नहीं किया और ना ही कभी कोई बहाना बनाया। मैंने सख्ताई के साथ इसका पालन किया कि आप नहीं सोचते कि परमेश्वर इससे प्रसन्न होंगे जो सब्बत के दिन को पवित्र रखते हैं और उन्हें आशीषें देंगे। हर एक छोटी चीजों के लिए परमेश्वर उन्हें स्वर्ग में इनाम देंगे, और ये परमेश्वर और आपके बीच में 100% विश्वास को दर्शाता है। तीसरा, न सिर्फ दुकान के मालिक बल्कि कंपनी के लोगों को भी रविवार के दिन काम करना पड़ सकता है। हो सकता है कि उन्हें रविवार के बीच में अपने किसी बिजनेस ट्रिप के लिए जाना पड़े, या फिर हो सकता है कि किसी ट्रेनिंग के लिए उनको जाना पड़े। अगर वो इन नियमों का पालन नहीं करते तो ये एक साधारण मामला नहीं है। तो फिर वो अपने काम से आने के बाद वो सभाओं में भाग ले सकते हैं, या फिर वो इंटरनेट और सैटेलाइट के द्वारा भी सभाओं में भाग ले सकते हैं। चौथा, कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परीक्षाएं रविवार के दिन होती हैं, और बिना परीक्षा दिए आप उन योग्यताओं को नहीं प्राप्त कर सकते। इस तरीके से आप अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सकते। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये देश मसीह देश नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में यदि आप सब्बत के दिन का उल्लंघन नहीं करना चाहते तो यह आपके लिए ठीक होगा कि आप उस परीक्षा को दें और बाद में आप उस सभा में भाग ले सकते हैं। हो सकता है कि आप रविवार के सुबह की सभा में भाग लें या फिर शाम की सभा में भाग लें अगर आपको उस दिन परीक्षा देनी है। क्या होगा अगर ये सभी चीजें आपके लिए असंभव है? अगर आप सब्बत के दिन को पवित्र रखना चाहते हैं, कैसे आप सभा में भाग नहीं ले सकते? आजकल के दिनों में इंटरनेट है और जो संदेश हैं वो भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। आप उन्हें एक और बार सुन सकते हैं और आप भी आराधना और स्तुतियों को दे सकते हैं। आप कुछ समय के लिए अलग बैठ सकते हैं और आप सब्बत के दिन को पवित्र रख सकते हैं, तो फिर परमेश्वर इसको ग्रहण करेंगे। मैं उन स्थितियों के बारे में बता रहा हूँ और यहाँ तक कि आपके पास एक अच्छा विश्वास है कि आप सब्बत के दिन को पवित्र रखना चाहते हैं। और अगर आप सब्बत के दिन को पवित्र रखना चाहते हैं लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि आप एक एथलीट हैं और वहाँ पर कुछ खेल होते हैं जो आपको खेलने पड़ते हैं, और आप किसी एक राष्ट्र के खिलाड़ी हैं और जो वो खेल है वो रविवार के दिन होते हैं, यह आपके लिए अच्छा होगा कि आप उस खेल के बजाय कोई और दूसरा खेल खेलें। आपको वो खेल अपने देश के लिए और अपने लोगों के लिए खेलने पड़ते हैं, तो आपको अपना मन बनाना चाहिए कि आप शनिवार के दिन को सब्बत के दिन के रूप में माने। अगर आप रविवार के दिन उन सभाओं में भाग नहीं ले पाते तो आप रविवार के दिन किसी दूसरे समय में आप उन सभाओं में भाग ले सकते हैं। आपको इसे जानना चाहिए और आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। और बहुत सी कुछ अलग परिस्थितियां भी हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक लोगों के लिए उनकी परिस्थितियों के अनुसार, उनके विश्वास के अनुसार करते हैं, क्योंकि वो हर एक मनुष्य को उद्धार देना चाहते हैं। वो उद्धार की उस सीमा को बढ़ाना चाहते हैं न्याय के अनुसार, ताकि बहुत सारे लोग उद्धार के मार्ग की सीमा में आ जाएं। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि सभी परिस्थितियों में हर एक मनुष्य का हृदय निर्भर करता है। हो सकता है कि आपको रविवार के दिन काम करना पड़े किसी कारण, लेकिन आपके पास ऐसा हृदय होना चाहिए कि आप उस दिन को परमेश्वर को अर्पित कर सकें। और यह भी कि आपके पास एक इच्छा और लालसा होनी चाहिए कि आप सब्बत के दिन को पवित्र मानना चाहते हैं। अगर आप सचमुच में इसकी लालसा रखते हैं तो आपका हृदय वो भवन में होगा, यहाँ तक कि आपका शरीर कहीं बाहर है। अगर आप आराधना सभा में भाग नहीं ले पाते किसी कारण से, तो आप इसके लिए बहुत ज्यादा क्षमा महसूस करेंगे और आप उन संदेशों को जो रिकॉर्ड किए गए हैं आप उनको लेंगे और आप फिर किसी भी संदेशों को नहीं खोना चाहेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप में से कोई भी गलत नहीं समझेगा कि हम अपनी इच्छा के अनुसार और अपने तरीकों से सब्बत के दिन का पालन कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कि मैं क्या करूंगा? क्या आप सोचते हैं कि मैं कभी सब्बत के दिन का उल्लंघन करूंगा जब तक प्रभु दोबारा आएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि जब भी मैं कहीं विदेशों में गया या फिर किसी स्थानों में गया रविवार के दिन, यहाँ तक कि मैंने कुछ पीने के लिए भी नहीं खरीदा, मैंने कुछ भी खाने के लिए नहीं खरीदा। यह इसीलिए क्योंकि मैं सब्बत के दिन को पवित्र रखना चाहता था। यहाँ तक कि मैंने एक मिनट का भी इंतजार किया और एक मिनट के बाद मैं उस स्थान पे गया और मैंने कुछ खरीदा, और मैं कभी भी इस दिन का उल्लंघन नहीं करूंगा भविष्य में। आइए कहें, अगर कोई एक कॉलेज मुझे डॉक्टर की डिग्री को देना चाहता है जब मैं उस छोटी परीक्षा को पार करूं, क्या आप सोचते हैं कि मैं सब्बत का उल्लंघन करूंगा और उस परीक्षा को दूंगा ताकि मैं उस डॉक्टर की डिग्री को प्राप्त कर सकूं? क्या आप ऐसा सोचते हो कि मैं करूंगा? क्या आप सोचते हैं कि मैं उस परीक्षा को दूंगा? नहीं, मैं कभी भी समझौता नहीं करूंगा। अगर आपके पास भी इस तरीके का विश्वास है तो आप भी उस तरीके की चीजों को करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते और आप इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैंने संदेश में बताया, तो आपको फिर ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आपने पाप किया है। हो सकता है कि आप कोई बहाना दो कि आपने सबत के दिन का पालन किया है। अगर यह परमेश्वर के द्वारा नहीं जाना जाता तो इसका मतलब है कि आपने सबत के दिन का उल्लंघन किया है। मैं आशा करता हूं कि आप इसे अपने मन में रखेंगे। सबत के दिन को उल्लंघन करना इसका मतलब है कि हम अपने उद्धार को खतरे में डालते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसी चीजें नहीं होने देंगे। हो सकता है कि वचनों के अनुसार जीना आपके लिए पहले स्तर पर थोड़ा मुश्किल हो जब आप सत्य को नहीं जानते और आप नहीं जानते कि क्यों आप सबत के दिन का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक बार दूसरे स्तर पे होते हैं तो लोग आपको कहेंगे कि सबत के दिन को पवित्र माने। हो सकता है सेल लीडर, डिस्ट्रिक्ट लीडर्स, वो आपके पास आए और आपको कहें कि आप सबत के दिन को पवित्र माने। हो सकता है कि यह आप पर दबाव डाले। इसके बारे में सोचिए। यहां तक कि यह आप पर दबाव डालता है कि यह आपके लिए अच्छा नहीं है कि आपका उद्धार हो और आप स्वर्ग में जाएं। क्या होगा अगर आपका उद्धार नहीं हो? और यहां तक कि हम एक अच्छा मसीह जीवन जी रहे हैं, क्या कारण है कि परमेश्वर ने हमें बहुत से कमरे दिए हैं ताकि हम सबत के दिन को पवित्र मान सकें? इसका मतलब यह नहीं कि हम उन परिस्थितियों के अनुसार ढले जहां हम सबत के दिन को पवित्र नहीं मान सकते। ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं ताकि हमारा और ज्यादा विश्वास बढ़ सके। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर की शिक्षा को समझेंगे और प्रभु के दिन को पवित्र मानेंगे। मैं लगातार अगले सत्र में इन तरीकों को बताते रहूंगा कि किस तरीके से हम सबत के दिन को पवित्र मान सकते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, विश्राम करने का मतलब है कि हम प्रभु में विश्राम करें और हम आराम पाएं। परमेश्वर ने हमें सबत के दिन को पवित्र रखने की आज्ञा दी है कि हम परमेश्वर के भवन में आएं और कोई भी संसार का कार्य ना करें। ये एक सच्चा तरीका है जिससे हम सच्चा विश्राम पाते हैं। आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, रविवार के दिन मैं अच्छे से आराम करना चाहता हूँ, घर पर मैं अच्छे से खाना चाहता हूँ, मैं कुछ चीजों का आनंद लेना चाहता हूँ और मैं अच्छे से सोना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही एक सच्चा आराम है। आप कैसे कह सकते हैं कि चर्च में आए और हम आराम पाएं और रविवार की सुबह की सभा और शाम की सभा में भाग लें और यहाँ तक कि डैनियल प्रार्थना सभा में भी? अगर आपके पास सच्चा विश्वास है तो आप इस तरीके से नहीं कहेंगे, क्योंकि ये आपको खुश करता है जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब आपका विश्वास अच्छा नहीं होता तो आप इस तरीके से कह सकते हैं। अब क्या आप यह नहीं सोचते कि आप स्वर्ग में अच्छे स्तर पर जा सकते हैं क्योंकि आप सबत के दिन को पवित्र मानते हैं? क्या आप यह नहीं सोचते कि आप हमेशा के लिए स्वर्ग में विश्राम लेंगे? स्वर्ग में आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर हमेशा केवल खुशी होगी। आप ऐसे सच्चे स्वर्ग में जा सकते हैं और अच्छे से आराम कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए, और ये आपके सबत के दिन को पवित्र रखने का प्रमाण होगा। लेकिन अगर आप इसके साथ समझौता करते हैं और केवल शरीर में ही विश्राम लेते हैं तो फिर आप अच्छे स्वर्ग के स्तर में नहीं जा सकते, और आप फिर अच्छे स्वर्ग में नहीं जा सकते और आपका उद्धार नहीं होगा। अगर आप नरक की गंधक की झील के बारे में सोचें तो आप किस तरीके से सच्चा विश्राम पा सकते हैं? यह केवल सबत के दिन को पवित्र रखने के द्वारा, और अच्छे स्वर्ग में जाएं और वहां पर सच्चा विश्राम पाएं, और वही केवल सच्चा विश्राम है। क्या आप सबत के दिन को पवित्र रखने के द्वारा खुश नहीं हैं? जब आपका विश्वास बढ़ता है, आप खुश होते हैं जब आप कलीसिया में आते हैं, आप परमेश्वर को स्तुति आराधना देते हैं और प्रार्थना करते हैं और मसीह में अपने दूसरे भाइयों और बहनों के साथ सभा करते हैं। हमें हमेशा के लिए सच्चा आनंद और खुशी और सच्चा विश्राम देने के लिए परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम सबत के दिन को पवित्र माने। इसीलिए परमेश्वर इसे एक आशीषित दिन भी कहते हैं। एक सप्ताह के अंदर सांसारिक लोग कितना ज्यादा दबाव महसूस करते हैं। उनके पास बहुत सी चिंताएं और दबाव होते हैं कि वो पैसा कमाएं अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। यीशु ने उन लोगों से कहा कि मेरे पास आओ, जो भी तुम्हारे पास चिंताएं हैं और जो भी तुम्हारे पास दबाव है, मैं तुम्हें सच्चा विश्राम दूंगा। अगर आप अपने आप को वचनों के अनुसार भरें, जो कि आपके एक आत्मिक रोटी है, और आप स्तुति और आराधना दें, और विश्वासियों के साथ आप अपनी आराधना सभा को करें और स्वयं से भी कार्य करें, तो आप नई ताकत से भर जाएंगे और पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगी। आप उद्धार की आशा के द्वारा भर जाएंगे और स्वर की आशा के द्वारा और सत्य में आप स्वतंत्र होंगे और प्रभु के खोए हुए स्वरूप को वापस लौटाने में आपको मदद मिलेगी। सब्बत के दिन को पूरी तरीके से पवित्र रखने के द्वारा आप परमेश्वर के सच्चे प्रेम को समझते हैं, जो हमेशा हमें भले वस्तुएं देते हैं। जो इस बात को समझते हैं तो उनके लिए विश्राम करना कितना अच्छा होगा। वो हमेशा प्रभु के दिन का इंतजार करेंगे, जबकि वो 6 दिन के लिए संसार में कार्य करते हैं। होने पाए आप इस लालसा भरे हृदय के साथ सब्बत के दिन को पवित्र रखें और सच्चा विश्राम पाए स्वर्ग में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ।